लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि शुद्धि की अग्नि परीक्षा की घड़ियां है आई। व्यर्थ विकल्पों की बीमारी लेने लगी विदाई। विस्मृत होने लगी पुरानी दुनिया दैहिक भान। होने लगे प्रयोग योग के नित नव अनुसंधान। इस तप से ही स्वर्णिम युग का तेज निखरने वाला। आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि की गति पर हुआ नियंत्रण संस्कार परिशोधन। शिव से कर तादात्म स्वयं का करते निज संशोधन। चिंतन लगा चमकने चित की चंचलता कुम्हलाई। निर्बलता पर निर्मलता ने विजय श्री है पाई। वाह तपस्या तेरा अनुभव रस भी बड़ा निराला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि अटल तपस्या यही है जिससे सारे विघ्न टलेंगे। भव भय बंध मिटेंगे मैपन के सब अस्थि गलेंगे। पंच तत्व परिवर्तन होंगे निज को जब बदलेंगे। सूक्ष्म फरिश्ते हंसते गाते प्यारे वतन चलेंगे। आपके बल से सतयुग आने वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होनी लगाऊ जाला, लगी तपस्या की अग्नि।
ओम शांति। देवभूमि हिमाचल की धरनी से निकले बाबा के अनमोल रतन, साथ ही साथ ज्ञान के स्पष्टीकरण और योग की अनुभूति कराने वाले हमारे आदरणीय राजयोगिनी सुषमा दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। तो आज, कल तो परिचय हमने दे दिया है डिटेल में, तो आज दीदी हमारे बीच में बहुत ही सुंदर विषय पर प्रकाश डालते हुए हमें पुरुषार्थ की ऊंचाइयों को कैसे छूना है वो बताएंगे। तो आज का विषय है ज्वालामुखी योग तपस्या कैसे करें। तो सुनते हैं दीदी के अनुभवों से। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? थक तो नहीं गए सारा दिन बैठ बैठ कर? हाँ नहीं, ये तपस जी ऊर्जा मिल रही है। यहाँ का वातावरण, जैसे कल ही कहा था ना, कहते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन यहाँ कण कण में भगवान की शक्ति इतनी है कि हम उसे अपने अंदर समेट भी नहीं सकते। समेटने के लिए भी तो कोई चीज समेटते हैं ना, अगर कपड़ा छोटा हो तो कितना आएगा, फिर बड़ा सा लेते हैं, फैला लेते हैं। तो आज हमारा विषय है ज्वालामुखी योग। कौन कौन करेगा ज्वालामुखी? खाना कौन कौन छोड़ेगा? देखा कितने हाथ उठे, फिर सारे हाथ नीचे हो गए। तपस्या का और भोजन का गहरा संबंध है। आप में से ज्वाला जी का मंदिर किस किसने देखा हुआ है? हाथ उठाना। देखा है ज्वाला जी का मंदिर? हिमाचल में है, तीन चार है। शास्त्रों में इस प्रकार का प्रसंग है कि जब पार्वती, वो तो ऐसे ही दिखाते हैं ना, पार्वती ने शरीर छोड़ दिया तो शंकर जी को उसकी जो दुख था, विरह वेदना थी, तो वो उसके शरीर को लेके क्रोध में भागते हैं पूरे संसार में। तो पार्वती जी के जहां जहां अंग गिरे शरीर के, क्योंकि वो तो डेड बॉडी थी, फिर वहां वहां शक्ति पीठ बने। हिमाचल में एक है चिंतपूर्णी, एक्चुअली तो नाम है चिंतापूर्णी। मानते हैं ऐसा कि जहां पार्वती जी का ये मस्तक गिरा, चिंता यही महसूस होती है ना, वो है चिंतपूर्णी। और जहां पार्वती जी की जीभ गिरी वो हो गया ज्वाला जी। यही ये काम करती है ना, और जहां आंखें गिरी वो हो गया नैना देवी। ऐसे बहुत से पूरे भारतवर्ष में शक्तिपीठ बने हुए हैं। हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, जहां से मेरा जन्म स्थान भी है, ये दोनों मंदिर आते हैं, चिंतपूर्णी और ज्वाला जी। ज्वाला जी में क्या विशेषता है? ज्वाला जी जो मंदिर है उसकी जो मुख्य एक लॉ है, लॉ समझ रहे हैं भाई, ये भाषा समझते हैं फिर? वो जो ज्वाला निकलती है वो मेन, उसमें एक जगह, वहां दो तीन ऐसे निकलती हैं, एक बड़ी निकलती है। और अगर आप मंदिर में थोड़े थोड़े समय बाद जाते हैं तो देखते हैं, कभी तो इस कोने से आग निकल रही है, अगली बार जाएंगे तो इस कोने में नहीं होगी, हो सकता है इधर हो इधर हो। पहले तो लोगों के लिए ये अचंभा था, लेकिन विज्ञान ने उसको भी टटोला तो वहां सल्फर गैस है, गंधक, उसके कारण जगह जगह आग निकलती है। लेकिन ये विचित्र है कि वो जो मेन है, मुख्य, वो कभी स्थान नहीं बदल रही। अभी तक तो जो मैंने भी बचपन से देखा है वो एक ही है। तो वो है ज्वाला जी का मंदिर, खूब लोग जाते हैं, बहुत भीड़ रहती है। और ज्वाला जी का मंदिर समझो जैसे ये बाबा की कुटिया है बगीचे में, और बगीचे से ऐसे पीछे से जैसे ये सीढ़ी आती है, ये थोड़ी दूर है पर थोड़ा ही पास में और हो, एक सीढ़ियां ऊपर चढ़ के जाती हैं, और वहां पर पहाड़ी के नीचे गुफा नुमा है, उसको कहते हैं गोरख डिब्बी। और गोरख डिब्बी में क्या है, ये जो टेबल है ना, इसकी लंबाई ज्यादा है, समझो इसको हम अगर स्क्वायर कर दें, इतना सा पहाड़ी के नीचे एक कुंड बना हुआ है, उसमें पानी है, और उस पानी में अगर आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे लगता है पानी खौल रहा है। और वहां जो पंडे होते हैं वो कहते हैं हाथ डालिए, लोग डरते हैं, पानी तो इतना खौल रहा है, गर्म होगा। लेकिन आप उस पानी में अगर हाथ डालेंगे तो वो पानी एकदम ठंडा। तो आप कहेंगे फिर वो खोलता हुआ कैसे दिखाई देता है? वही सल्फर गैस के कारण, गैस के कारण उसमें वो जैसे पानी उबलता है ना, कैसे बुदबुदे निकलते हैं, वो ऐसे दिखाई देता है, पानी खोल रहा है। और फिर जैसे ये यहां पर ये है, फिर इधर से जो सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी के पास ही दीवार में है एक दो जगह ऐसी, वहां भी वो कुछ कहानी सुनाते हैं जो मुझे ध्यान में नहीं है। फिर वो कहते हैं अब थोड़ा सावधान होके खड़े होना, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत कम है, जैसे ये दीवार है मैं यहां खड़ी हूं, तो वहां भी वो ऐसे माचिस की तीली जलाते हैं, ऐसे लगाते हैं तो आग ऐसे निकलती है जैसे आप मुंह से ना ऐसे जीभ निकले बच्चों की तरह ना, तो वो एक वहां भी क्योंकि सल्फर है, गैस निकल रही है, तो वो तीली लगाते हैं ना, अगर सावधान नहीं होते सामने वाले तो कई बार आग पकड़ भी लेती है, पर बुझ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बाबा कहता है ज्वालामुखी योग, हम ब्राह्मण भी कहते हैं ज्वालामुखी योग। अब हम आते हैं इस बात पर, यह तो मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी का मंदिर क्या है, जहां लोगों की अनेक मनौतियां हैं पूरी होती हैं। देवी बताई ना कहानी, पार्वती जी की जीभ वहां गिरी थी, जीभ गिरने के कारण वो ज्वालामुखी है। तो ये जुबान क्या करती है, बहुत काम करती है ना, कल बताया था, खाती भी है तो आग भी लगाती है, इसलिए कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल हुए। तो हमारी वाणी कैसी हो? अब अगर हम ज्वाला जी योग शुरू करते हैं तो यहां से ही शुरू होगा। कल भी शायद मैंने कहा था मैं आपको मौन के लिए नहीं कहूंगी, मौन तो बहुत गहन तपस्या है, उसके लिए अपने अंदर बहुत दृढ़ता चाहिए। लेकिन अंतर्मुखी रहें। अंतर्मुखी माना जरूरत है तो बोलें, नहीं तो शांत रहें। केवल यहां से शांत नहीं, ये तो मैं ऐसे बैठ जाऊं तो आप कहेंगे बहन जी तो देखो दो दिन से मौन में है, उसकी भी तप की रौनक तो आती है। लेकिन अंतर्मुखी, अब यहां से तो मैं चुप हूं, अंदर क्या उबल रहा है, मैंने सोच लिया मुझे 10 दिन 15 दिन 1 महीना मौन में रहना है। अब यहां से तो मौन, अंदर क्या हो रहा है हलचल? आपने कोई काम नहीं किया, मैंने आपको इशारे में कहा तो अंदर होगा ना, इसने किया नहीं, फिर मुंह से बोलना तो नहीं है मौन में, तो खी जाएगी, दिखाई देगा दूसरों को। तो मौन नहीं, मौन के लिए बहुत अंदर में दृढ़ता चाहिए। लेकिन अंतर्मुखी उससे थोड़ा एक स्टेप नीचे है, जहां जरूरत हो। हमारी मम्मा थी ना, मम्मा अंतर्मुखी थी। आप मम्मा से मिलने गए, कुछ पूछने गए, मम्मा बोलती थी और फिर मम्मा अपने अभ्यास में रहती थी। जैसे अपन कहीं भी जाते हैं ना, यहां मधुबन में भी आए हैं, मान लो मैं भी सीढ़ी उतर के जाऊंगी ना, तो इधर उधर उधर कौन है, कोई मान लो आप पहचान वाला भाई बहन है, ऐसे हम करते रहते हैं या कहेंगे ओम शांति। लेकिन मम्मा को, मैं बहुत छोटी थी, हम लोग अंबाला में रहते थे, मम्मा आई वहां 2 बार आई थी। एक बार एक जगह फंक्शन था, पंजाब में एक इंग्लिश पेपर निकलता है ट्रिब्यून, पहले वो अंबाला से निकला करता था, फिर चंडीगढ़ बना तो उसका ऑफिस चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गया, अब चंडीगढ़ से निकलता है। तो वहां जो ट्रिब्यून कॉलोनी थी, क्योंकि उस समय बहुत थोड़े से भाई बहन थे, लेकिन 3-4 युगल थे जो उसी कॉलोनी के माना ट्रिब्यून ऑफिस के ऑफिसर्स थे जो निकले थे। मम्मा अंबाला में आई तो उनके वहां एक हॉल था ट्रिब्यून ऑफिस का, उस कैंपस में जहां मम्मा का प्रोग्राम था। तो मैंने, हम तो बच्चे थे 6-7 साल के, पर मुझे वो मम्मा का चित्र कभी भी नहीं भूलता जब कभी बात करते हैं। बच्चे तो कैसे होते हैं ना, आगे आगे जाते हैं देखते हैं, तो बड़े तो फिर भी थोड़ा उनको कहेंगे लाइन में। मम्मा चल रही है, मम्मा के हाथ ऐसे और बस ऐसे, आंखें नीचे ऐसे नहीं, मां ओम शांति ऐसे भी नहीं। मम्मा इधर उधर झांकने का तो कोई मतलब ही नहीं था। ये है अंतर्मुखता की तपस्या, हमें इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है। अब मान लो मेरा मौन तो है, मैं आज से कह देती हूं कि भाई बहनों मैं आपको बताती हूं, अब मैं 1 सप्ताह मौन में रहूंगी, लेकिन जब बाहर निकलती हूं कमरे से, बाबा के कमरे से इधर, तो जो भी दिखाई दे रहा है, तो मौन तो ना हुआ ना। मम्मा का चलना, जिसको बाबा, आजकल तो मुरली में नहीं आता है मुरली, पहले बाबा कहते थे बच्चे मम्मा की चाल डेल जैसी है, माना मोरनी जैसी है, मम्मा चलती थी ना। तो ज्वालामुखी योग के लिए सबसे पहले तप है इन कर्म इंद्रियों का। अभी तो हमारे मन में बहुत हलचल है, जैसे बड़े शहरों में होता है ना, आपके नेपाल में भी क्योंकि पहाड़ी जगह है तो वहां भी इतना रश नहीं होगा, काठमांडू में शायद हो थोड़ा, लेकिन आप बड़े दिल्ली में चले जाओ, जयपुर में आओ, तो आप देखेंगे कितना ट्रैफिक है, कारें हैं, बाइक्स हैं, ऑटो है, रिक्शा है, लोग भाग रहे हैं, ऐसे ही भीड़ हमारे अंदर है संकल्पों की। ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, उससे मिलना है, ये बताना है, ये बताना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो गोरख डिब्बी है उसका पानी तो ऐसे लगता है उबल रहा है, लेकिन पानी एकदम ठंडा है। तो पहले अपने मन बुद्धि की, अपना दिल दिमाग को एकदम ठंडा, आसपास वातावरण में स्थितियों परिस्थितियों में बहुत हलचल है और आगे और भी आएगी, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, हम ठीक हैं, अब कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं आग लग रही है, बस वही शेयरिंग हम कर रहे हैं। तो अपने मन बुद्धि को एकदम पहले हम शांत करें, ताकि अनेक प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों की ये जो सल्फर गैस है ये हमें डिस्टर्ब ना करे। इसलिए कहा पहले है इसका स्टेप, कर्म इंद्रियां जीत। भूखे नहीं रहना है, भोजन करना है, पर कितना करना है। एक बाबा की याद में, आपने मम्मा बाबा के अगर चित्र देखेंगे कई जगह लगे हुए हैं, छोटे हॉल में होगा, बाबा भोजन कर रहे हैं एकदम ऐसे, मम्मा भोजन कर रही है, मम्मा को हमने देखा भोजन करते हैं, कोई इधर उधर नहीं देखना। और बाबा मुरली में कई बार कहते हैं, जो अच्छे साधु संत सन्यासी होते हैं वो एक बार थाली में ले लेते हैं, बस दोबारा नहीं। हम तो क्या करते हैं, पहले थोड़ा ले लिया, अब मान लो कोई सब्जी या चावल मेरे टेस्ट का बना है, मैं खा रही हूं, आप आए, अरे मेरे लिए थोड़ी सब्जी और ले आना। कर्म इंद्रियों के वशीभूत है हमारा योग, कर्म योग, कर्म इंद्रियां जीत योग, प्रकृति जीत योग है। महसूस करें, खाना है किस लिए, इस शरीर को चलाने के लिए। आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना, बाइक कार चलाते हैं, रिफाइन पेट्रोल, तो हम भी भोजन खाएं, सतोगुणी खाएं, लेकिन तला हुआ ये वो, अगर अभी मौसम बहुत बढ़िया है और पकौड़ा बन जाए तो, और कहा जाए बस दो दो मिलेंगे, तो कहेंगे एक और ले आना जरा मेरे लिए, एक और तो छोड़ो, अब मुझे खाना ही नहीं है पकौड़ा, पराठा मुझे खाना ही नहीं है, पूरी मुझे खानी नहीं है। क्योंकि जब तक ये जो है ना पेट, ये हल्का नहीं है, तो हमारी कर्म इंद्रियां शीतल नहीं होंगी। आप देख लीजिए, अगर हम भोजन करते हैं दोपहर को, तो उसके बाद सुस्ताते हैं ना कि नहीं सुस्ताते। कोई दुकानदार होगा, वो अपनी दुकान पे भी भोजन करने के बाद थोड़ा सा तो 10-15 मिनट तो रिलैक्स होता है, चाहे गद्दी पर चाहे कुर्सी पर, क्योंकि भोजन हमारे अंदर आलस पैदा करता है। फिर मैंने भोजन खाया, अब शरीर की शक्ति कहां लगेगी, भोजन को हजम करने में। इसका अर्थ ये नहीं लेना कि खाना नहीं है, खाएं दो वक्त खाएं, सवेरे शाम बस एक वक्त खाएं बस, बाकी समय आप कहेंगे फिर क्या खाएंगे, भूख तो लगती है, फल खाओ, कच्ची सब्जियां खाओ, आपकी अनेक बीमारियों का इलाज है। पहाड़ों में तो वैसे भी सब्जियां पत्ते बहुत हैं खाने को, इसलिए कहा पहले ये ज्वालामुखी योग, फिर दूसरा स्टेप है मेरा बोल। कोई आकर मम्मा को शिकायत भी करता था ना, मम्मा देखो वो उसने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, मम्मा कहती थी बहुत प्यार से, दादियां सुनाया भी करती थी हमें, मम्मा कहती थी अच्छा तुम्हें क्या करना चाहिए, मम्मा इसने मुझे ऐसे कहा है ना, तंग किया, देखना बाबा इसको भी सजा देगा। कहते हैं ना कई बार गुस्से में, मम्मा कहती थी ये भी नहीं कहना, ये भी पाप बनता है, मैंने अगर गलत किया है आपके साथ तो भगवान आपसे रिकमेंडेशन थोड़ी लेगा, पूछेगा थोड़ी कि इसने गलत किया है ना, तुम्हें दुख मिला ना, अच्छा इसको सजा देते हैं, रिकमेंडेशन चाहिए क्या भगवान को? मेरे कर्म की सजा मुझे स्वतः मिलेगी। संसार में आजकल जो भी झंझट है आप देख लीजिए, चाहे परिवार है, समाज है, देश है, पॉलिटिकल है, सारे झंझट कहां से हो रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं। मैं बाबा का बच्चा, मुझे अंतर्मुखी रहना है, बोलना ही नहीं है। दादियां सुनाया करती थी जब ये लोग कराची में रहते थे, तपस्या करते थे, बाबा ने एक बार एक मास सबको मौन में रखा था। एक बाबा की अव्यक्त मुरली भी है, उसमें भी बाबा ने कहा बच्चे अपनी अपनी प्लानिंग करो, अपने आप एक मास मौन में रहो, अनुभूति करके देखो, एक अव्यक्त मुरली में है बाबा की। आप कहेंगे हम तो कारोबार करते हैं, तो कम से कम ये तो नियम बनाए, सवेरे 4 बजे हम उठते हैं, 4 बजे से 9 बजे तक 5 घंटा हमें कुछ भी नहीं बोलना है, शांति में रहना। क्यों हम सवेरे सवेरे हल्ला करते हैं, चाय दे दो, अरे तू मेरी चाय नहीं लाई, मैंने क्लास में जाना है मुरली सुनाने, नहीं लाई तो आप शांति से जाओ ना। सवेरे उठते हैं टावल नहीं है, फलाना कपड़ा, रात को अपने सब कपड़े रख के तैयारी करके सो, मुझे सवेरे 5 घंटा बोलना नहीं है, कुछ भी हो जाए, कोई इमरजेंसी ऐसी हो गई, कोई कहेंगे सेंटर पर हम मेरा तो शुरू से नियम है सवेरे नहीं बोलना है, कभी कोई प्रोग्राम है कुछ है बोलना भी है तो धीरे ऐसे बोलो, बता दो ये करना है ये करना, आवाज नहीं आनी चाहिए। आप करके देखिए, एक मास मुझे एकदम विस्परिंग वॉइस में बोलना है, आपके अंदर इतनी एनर्जी जमा हो जाएगी, बोलने से हमारी शक्ति बहुत खर्च होती है। मम्मा कहती थी, दादियां सुनाया करती हैं, मम्मा कहती थी तुम थोड़ी देर बाबा को याद करते हो, योग लगाते हो, शक्ति जमा करते हो, पर जितना जमा करते हो उससे ज्यादा खर्च करते हो। अब योग में तो हम कितना बैठेंगे, चलो मान लो मैं तो कोई बहुत बड़ी योगी तपस्वी हूं, 2 घंटा नहीं 4 घंटा 5 घंटा योग करेंगे, 24 घंटे में से 5 घंटा मैंने योग कर लिया, बाकी 19 घंटा क्या किया, वो तो फुल वॉइस तो हो गई ना, 19 ज्यादा है या 5 ज्यादा है, किधर जाएगा तराजू, नहीं नहीं 5 की तरफ, नहीं ना, समझ गए ना, सबसे ज्यादा। आप एक मास यही करके देख लीजिए, घरों में भी बच्चों को भी धीरे बोलो, आप देखना आपको कितनी, किसी को पेट में गैस हो रहा है, किसी को सिर दर्द हो रहा है, आप करके देखिए, आपकी 50% बीमारियां खत्म हो जाएंगी अगर आप ये इस पर करो। भोजन भी सादा, वैसे तो मुझे मालूम है पहाड़ों का तो बहुत सिंपल, आप लोग भी दाल चावल ही खाते होंगे, हमारे हिमाचल में तो दाल चावल ही खाते हैं, हाँ पर जिस जिस स्टेट का जो भी है, जो भोजन है, खाओ, शांत रहो। बच्चों आपके, आप अपने बच्चों को कह के देखना कि हम मधुबन से आए हैं ना, आप चाहे भाई लोग भी दुकान पर ऑफिस में, हम तपस्या करके आए हैं, हमें कहा है कि आप मौन में रहो, तो हम ऐसे धीरे बोले, वो कहेंगे बहुत अच्छा है पापा, आप शांति में, हम सब कुछ कर लेंगे। मां तू मौन में रह, आप देखना आपके बच्चे कितनी दुआएं देंगे। बाबा कहता है दुआएं लो, किस किस को दुआएं लेनी है, किस किस को लेनी है, सोच सोच के हाथ उठाते हैं, सारे नहीं उठे। दुआएं लेने की सबसे बड़ी विधि, आप कह के देखना अपने घरों में जाके, आपके घरों में बहू बेटे होंगे, बेटा अभी एक हफ्ता ना मैं बिल्कुल, कोई जरूरी काम होगा तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं, हमें वहां भगवान ने कहा है मौन में रहना है। आपके घर वाले तो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे, कहेंगे शुक्र है रोज सिर खाते थे हमारा, वो वहां कौन सा आपका पशुपति नाथ का मंदिर है, कहेंगे ये तो मौन में ही रहे तो बहुत अच्छा है। आप करके देखिए, उनको भी खुशी आपको भी खुशी, आप करके देखिए, एक एक दिन का करिए, फिर एक सप्ताह का कीजिए। ज्वालामुखी योग का अगर आप पूछते हैं सच्चे दिल से, वो ये नहीं है कि मैंने कमेंट्री दी, मैं शुद्ध आत्मा, ये ज्वालामुखी नहीं, पहले तो मेरे में ये समेटने की शक्ति आए, मेरा मित्र मिले, दोस्त मिले, पड़ोसी मिले, हाँ हम गए थे, हमारा वहां बहुत अच्छा रहा, क्लास में भी भाई बहन, अरे तुम चली नहीं, अरे तुम चले नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी क्लासेस हुई, वो हमारे चेहरे से देखें, महसूस करें सचमुच ये कुछ प्राप्त। जैसे मैंने बताया ना, ज्वाला जी के मंदिर में तो वो लाट उसकी जो है लौ, वो तो जली रहती है, कोई वहां मूर्ति नहीं है, कोई देवी की मूर्ति नहीं है मंदिर में, चिंतपूर्णी में भी कोई मूर्ति नहीं है, ब्रिजेश्वरी के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। हम तो जब शहरों में आए ना और देखा काली का मंदिर और फलाना और बड़ी बड़ी मूर्ति है, तो हमारे तो अंदर ही नहीं उतरता था, हमने तो ये देखा था वो पिंडी होती, बस पत्थर सा ऐसे नीचे, और उसके ऊपर ही मुंह ऐसे, आंख और नाक कान बना होता है। तो देवियों की तो पिंडी ही दिखाते हैं, माना जैसे आज बाबा ने कहा ना, देह भान से परे, यही तो हमारी तपस्या, यही ज्वाला जी योग है, बस मैं देह, एक की लगन में मगन हो जाए। कोई संकल्प नहीं, तो हम कर्म इंद्रियां जीत, प्रकृति जीत बने। ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है ना, तो भोजन, वाणी, बोलना है तो आशीर्वाद के बोल बोलो, बोलना है तो प्रेरणादायी बोल बोले, बोलना है तो मीठा बोलना है, बोलना है तो अच्छा बोलना है। कई बार तो बच्चे को भी प्यार से हम क्या कहते हैं, प्यार कहते हैं, प्यार से कहा ना, तू तो नालायक है, ए बुद्धू इधर आना, छोटा बच्चा होता है। अब हमने उसको कौन सा वरदान दिया, कौन सा वरदान दिया बुद्धू, मुझे तो लगता है तू अनपढ़ ही रहेगा, तेरा पढ़ाई में मन कम है, कौन सा वरदान दिया, कौन सा वरदान दिया। तो हम जो बोल रहे हैं, जब वही हमारे सामने आता है तो हम स्वीकार क्यों नहीं करते। मैंने ही बोला ना, कोई छोटा बच्चा है, मेरा भाई है, बच्चा है, कोई भी है, मुझे तो लगता है तुम बड़े होके ना बस वो चाय की दुकान ही खोलोगे, अब बड़ा हो गया धंधा नहीं कर रहा, क्योंकि रोज यही तो कह रही थी अब लोग, अब कहते हैं बहन जी वो धंधा नहीं करता। तुमने क्या बोला था, यही बोला था, हमारे शब्द एक एक वरदान है। इसलिए जैसे कहा भोजन सिंपल हो, वैसे ही अगर हमें ज्वालामुखी योग करना है, मेरी वाणी वरदानी आशीर्वाद की, मीठी दुआओं भरी, प्रेरणा देने वाली, खुशी देने वाली, लेकिन हम बोलते क्या है, क्या बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, क्या विचार है, मीठा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। अभी चाहे आप ऐसे कहेंगे, पर हम बोलते कैसे हैं, माताएं कड़वा कड़वा बोलते हैं, खट्टा मीठा बोलते हैं, चटपटा बोलते हैं, कसैला बोलते हैं, मीठा मीठा कहां बोलते हैं, तीखा तीखा बोलते हैं। आजकल जो हरी मिर्च होती है ना बरसाती, वो बड़ी तीखी होती है, तीखा तीखा बोलते हैं जो दूसरे को चुभ जाए, तो मेरा ज्वालामुखी योग लगेगा। तो हमें जैसे कहते हैं ना, प्रोजेक्ट बना लीजिए, अपना टारगेट बनाइए। दिवाली तक, नवंबर लास्ट में दिवाली होगी, अभी अगस्त है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीने हैं, क्योंकि एक दिन का पुरुषार्थ नहीं। पता नहीं कितने सालों से ज्वालामुखी योग वो मंदिर में वो लौ जल रही है, और कहते हैं कि जब अकबर भारत में राज्य करता था, उसने कोशिश की थी इस लौ को बुझाया जाए, पर बुझा नहीं पाया था, फिर वो सोने का छत्र चढ़ाने आया था, तो जब चढ़ाने आया तो वो लोहे का बन गया। वो तो चमत्कार तो है ही है ना। तो कहने का भाव, ज्वालामुखी योग कोई एक दिन का नहीं है, ज्वालामुखी योग मेरा जीवन है, लाइफ है, लाइफस्टाइल नहीं। लाइफ और लाइफस्टाइल में अंतर है। लाइफस्टाइल क्या है, आज मैंने नेपाली टोपी पहन ली, कल नहीं पहनी, ये लाइफस्टाइल है। आज बाल ऐसे बना लिए, कल बाल ऐसे बना लिए, ये मेरा स्टाइल है। आज पल्ला ऐसे कर लिया, कल ऐसे कर लिया, ये स्टाइल, स्टाइल वाला ज्वालामुखी योग नहीं कर सकता। आज तो मौन में रहे और कल खूब जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, मेरा यही लाइफ स्टाइल। अब मुझे धीरे ही बोलना है, प्यार से बोलना है, मीठा बोलना है। घर में बच्चा लेट आ जाए, कॉलेज में पढ़ने वाला है, कुछ धंधा नौकरी करने वाला है, रात को 10 बज गए, इतने संकल्प, आया नहीं आया नहीं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, पता नहीं कहां चला गया। आप योग क्यों नहीं करते बाबा, जहां है वो आत्मा सेफ रहे आ जाए, और घर में घुसे तो फिर देखो आप कौन सी बोछार करते हो, कौन सी बरसात। तुम्हें रोज कहा जाता है टाइम से आओ, तुम्हें समझ नहीं आता, तो उसको तो इतने सालों में भी समझ नहीं आया, आज आप इतनी बोछार कर रहे हैं, समझ में आएगा, आएगा, क्या विचार है। तो आप शांत क्यों नहीं रहते। शांति माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं नहीं, शांति माना क्या भी स्थिति परिस्थिति आए मैं शांत। घाटा पड़ा फायदा हुआ मैं शांत। हमने तो दादियों को देखा है, कभी कोई प्रोग्राम, चाहे मधुबन में भी प्रोग्राम होते थे, कॉन्फ्रेंसेस होती थी, कोई अच्छे अच्छे लोग आए, हम लोग खुश होते, दादी देखो ये फलाना ऐसे आ गया, ये दादियां कहती थी खुशी को भी समाना सीखो। अच्छा है कोई आया, हमने एक दूसरे से शेयरिंग भी की, अरे ये वीआईपी आया। हमारी दादियों में जमाने की शक्ति बहुत थी। हम तो कुछ अच्छा हो जाए तो फिर देखो पटाखे छोड़ेंगे, और कुछ गड़बड़ हो जाए तो उतने ही वॉल्यूम से चिल्लाना शुरू करेंगे। तो ना चिल्लाना है ना पटाखा बजाना है। अच्छा हो गया, थैंक यू बाबा। रोज 4-5 पत्र लिखो बाबा को थैंक्स के, बाबा आज का दिन बहुत अच्छा गया, थैंक यू बाबा। एक लाइन बाबा की थी ना थोड़े दिन पहले, मुरली बच्चों को पत्र लिखना चाहिए, लिखते नहीं है, राजी खुशी का पत्र लिखो, एक डायरी बना लीजिए, रोज मुझे 2 पत्र तो कम से कम लिखने हैं। ज्यादा पुरुषार्थी हैं, 5-7 पत्र लिखिए बाबा को, बाबा आपका शुक्रिया, आज का दिन बहुत अच्छा हुआ, ये काम अच्छा हुआ, शुक्रिया बाबा। आज बाबा बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन खाया, मैं आत्मा संतुष्ट हूं, शुक्रिया बाबा। लिखो बाबा को पत्र, लिखो बैठ के। इधर उधर हम पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, कहां कहां टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो ये है विधि संकल्पों को बचाने की, जमा करना है। कागज के नोट जमा हो ना हो, अगर मेरा श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा है तो दुनिया की कोई भी ताकत किसी भी प्रकार से हमें कष्ट नहीं दे सकती। सारा समय शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा ने इतना अच्छा जीवन दिया है। थैंक यू कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? हम कहीं जाते हैं ना, एक कोई फूल भी देता है वेलकम, हम कहते हैं थैंक यू, ऐसे ही कहते हैं ना। बाबा इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी मुरली सुनाता है, लोरी देता है, सारा दिन उसका सिमरण करो। आज बाबा ने क्या कहा है, बस ये देह का भान छोड़ दो। ये तभी छूटेगा जितना हम अंतर्मुखी बनेंगे। ये भी देखूं, ये भी लूं, ये भी लूं, जो जरूरत है जरूर लो, क्यों नहीं लेंगे। सर्दी है, मेरे पास गर्म कपड़ा नहीं है तो खरीदेंगे, जूता चप्पल टूट गया तो खरीदेंगे, खरीदने समय देख लेंगे अच्छा ले लेंगे। लेकिन अब ये फैशन आया है, अब ये फैशन आया है, अब ये रिवाज है, अब ये रिवाज है। घर गृहस्थी में रहते हैं तो रहना कैसे है? बाबा कहता है घर गृहस्थी में रहो, ट्रस्टी बन के रहो। मेरे सर्व संबंध बाबा के साथ है, ये अभ्यास हमें करना है। आज भी बाबा ने कहा था ना, उसकी ही महिमा है, तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्याश्च द्रविणम तमेव। आप देखिए, विद्या माना पढ़ाई, द्रविणिम पैसा, सब कुछ तुम ही हो। सर्वम मम देव देव कहा है ना, बाबा अविनाशी है, अविनाशी बाबा के साथ अविनाशी संबंध जोड़ेंगे तो चारों युगों में संबंधों का सुख मिलेगा। कई भाई बहन कहते हैं बहन जी मेरा बेटा ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी मां ऐसी है। अभी जो है उनको दुआएं दो, अच्छे हैं तो भी, नहीं है तो भी, इनका शुक्रिया है, इन्होंने हमें भगवान से मिलाया है, याद कराया है। लेकिन पूरे चार युगों में, पूरे कल्प में अगर हम संबंधों का सुख चाहते हैं, हमारे बच्चे अच्छे हों, माँ बाप अच्छे हों, पति पत्नी अच्छे हों, 84 जन्मों में 84 मिलेंगे ना या नहीं मिलेंगे, क्या विचार है? तो कैसे संबंध चाहिए, कैसे चाहिए, कैसे चाहिए? तो अभी भगवान के साथ आप सर्व संबंध अच्छे निभाएंगे तो सारे संबंध अच्छे। आप अभी भी करके देखिए। बस बाबा ने कहा एक मुझे याद करो, घर गृहस्थी में रहते हैं, संभालना जरूर है, बच्चों को भी संभालना है। साकार में बाबा थे ना, हमारे लौकिक माँ बाप हर साल आते थे बाबा से मिलने या मधुबन में, तो कई हम तो छोटे छोटे थे, मैं ही 6 साल की थी शायद, 6-7 साल की जब लौकिक माँ बाप ज्ञान में आए, और फिर हम लोग मेरे से छोटे मेरे भाई बहन थे। तो हमारी माँ ने एक बार पूछा बाबा से, बाबा बच्चे कहना नहीं मानते तो क्या करना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों को कभी भी मारना नहीं है, और हम हमेशा कहते हैं हमारे माँ बाप ने कभी नहीं हमको मारा, हमें पता ही नहीं चमाट कैसे खाई जाती है, ना स्कूल में खाई ना माँ बाप से खाई। तो बाबा फिर क्या करें, ये शैतानी करते हैं या कुछ करते हैं? तो बाबा ने कहा जो उनकी प्रिय चीज है ना, वो थोड़ा पनिश करो उनको। भाई जैसे मान लो मुझे खाना चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है, उनको बोलो आपने ये किया है ना तो आपको चॉकलेट नहीं मिलेगा, आपने पढ़ाई नहीं की तो आपको ये नहीं। बाबा कहता था बच्चे बच्चों को डांटना नहीं है और ना ही बच्चों को चमाट लगानी है, बच्चों को बाबा बिल्कुल सख्त। कई बार मुरली में भी कहते हैं बच्चे वो कृष्ण को क्या दिखाते हैं, जो कृष्ण का दिखाते हैं ना बहुत नटखट था, तो मां क्या करती थी, ओखली से बांधती थी ना दिखाया, उसका मतलब क्या है। सत्युग में बाबा फिर ये भी कहता है सत्युग में बच्चे ऐसे चंचल नहीं होंगे, लेकिन बताया है बच्चों को कैसे डील करना है प्यार से। हम कई बार देखते हैं हमारे पास क्लास में कभी कोई ऐसा प्रोग्राम है, 4-5 छोटे छोटे बच्चे हल्ला करते हैं, माँ बाप की नहीं मानते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ बच्चे होते हैं ना, उनको बोलती हूँ इधर आओ बैठो, यहाँ 1 घंटा बैठोगे फिर तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं बुद्धू बन के, फिर उनको देते भी हैं, नहीं तो फिर उनका बेचारों को लगेगा ना ये बड़े झूठ बोलते हैं, फिर हम उनको टोली देते हैं या कोई भी चाहे चॉकलेट दें। बच्चे बैठ जाते हैं, आप करके देख लीजिए अपने घर में। तो बाबा साकार में थे, बाबा कहते थे बिल्कुल नहीं बच्चों को मारना है। तो ये जो मम्मा बाबा की अलौकिक पालना है, ये आत्माओं में शक्ति भरती है। हम भी अपने घर गृहस्थी में ऐसा रहें, हमें भी शक्ति मिले, हमारे बच्चों को भी शक्ति मिले, तब इस ज्ञान का फायदा है। आजकल जो हम भाई बहनें आते हैं और जो शुरू शुरू में आए, ये अंतर है। आगे बाबा मुरली में जो कहता था ना भाई बहन कहते थे हाँ, हमें याद है शुरू शुरू में दादियां सुनाती थी, कराची में हम रहते थे सारी सारी रात योग करते थे, बाबा योग कराता था। उस समय जो भाई बहन आए वो भी कहते थे सैटरडे नाइट सारी रात योग में बैठते थे, क्योंकि संडे को रेस्ट मिल जाता है। तो ये होता था मन में लगन। इन दादियों ने इतना पुरुषार्थ किया, मम्मा बाबा ने इतनी तपस्या की, हम भी तो करें। आजकल तो हम क्या करते हैं, यहाँ मधुबन भी आए हुए हैं ना, अभी जरा देखना आपके अड़ोस पड़ोस में कितने जरा लोरी झूल रहे हैं, अलर्ट रहे हैं। ज्ञान पहले लेने की भी तो लगन चाहिए ना, ऐसा नहीं हाँ बहुत अच्छी क्लास थी बहन जी ने बहुत अच्छी क्लास कराई, सर्टिफिकेट देने आए क्या? सर्टिफिकेट नहीं, मैंने इसमें से क्या लिया, मैं क्या करूंगी। तो ज्वालामुखी योग के लिए कर्म इंद्रियां जीत, अंतर्मुखी भोजन सिंपल। सारा दिन मुरली को रिपीट करो, क्योंकि जब तक अंदर ज्ञान का चिंतन नहीं है बाबा की याद नहीं आएगी। आज बाबा ने क्या सुनाया, चलो मुझे ज्यादा याद नहीं रहता, आज या कल भी कहा ना बाबा ने मुरली में, बूढ़ियां कहती हैं बाबा हमें तो इतना समझ नहीं आता है। बच्चे ये तो समझ आता है ना, हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा मेरा है, बस इसी धुन में रहे, बाबा मेरा है, बूढ़े हैं, बूढ़ियां हैं, जवान हैं, मैं बाबा का हूं। अव्यक्त मुरली में बाबा ने कितनी बार कहा, बच्चे चाबी है कौन सी, मेरा बाबा। तो हमें केवल मुंह से नहीं बोलना है मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, ये रट नहीं चाहिए, अंदर से बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा है। क्योंकि ये मन बुद्धि का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। हमें कौन सी बातें याद हैं अभी तक भी, अरे हमारे, मैं जब घर में पैदा हुई ना, हमारे घर में बहुत गरीबी थी, फिर ऐसे मेहनत की, वो बातें याद करते रहते हैं। हमने तो बहुत मेहनत की तब हम ये बने। बाबा कहते हैं ये नशा चढ़ाओ, बाप आया स्वर्ग की बादशाही देने, कहते हाँ वो तो है, वो है तो वो याद करो ना भाई बहनों, वो याद ही नहीं करते, ये सुनाते ही नहीं है, आप करो पक्का। मुझे दिन में कम से कम भी 10 लोगों को 50 लोगों को यही बताना है कि देखो भगवान हमें विश्व का मालिक बनाने आया है, देवता बनाने आया है। पर वो खुशी हमारे अंदर हो ना पहले। मान लो कोई कुछ करता है, अरे भाई भगवान देवता बना रहा है, आप ऐसे क्यों कहते हैं। पर हम तो क्या करते हैं, आप कुछ कह के तो देख, आपको पता नहीं है बड़ों से कैसे बोलना है, फट से ये फटाफट फटाफट, पता भी नहीं पड़ता कब धोखा दे दिया। तब हमारी स्मृति श्रेष्ठ होगी। पहले हमारे अंदर ज्ञान सिमरण, बाबा ने आज क्या क्या कहा है, मैं स्वर्ग में ले चलने आया, मैं पावन बनाने आया हूं, ऐसे ही याद कर लो। पूरी पॉइंट नहीं भी याद रहती है, देह का भान छोड़ो, बाप को याद करो, भगवान की महिमा है, दुख हरता है सुख करता है। चलो मुरली भी याद नहीं, ज्ञान पैसे तो बुद्धि में है ना, उसी का मनन करो। पहले है सिमरण फिर है मनन। इसका मतलब क्या, जैसे कल बाबा ने कहा था, बच्चे समझो, क्या समझना है, मैं आत्मा हूं पहले ये समझो, समझो माना रियलाइज करो, हां मैं आत्मा हूं, आत्मा के ही संबंध है, आत्मा ही खेल खेलती है। करो ना, कल बाबा ने कितना सिखाया, अपने से बातें करो, बार बार पूछो मैं कौन हूं। जिन्होंने दादी जानकी जी को देखा होगा, दादी जानकी यही तो कहती थी, मैं कौन मेरा कौन, तो यही चिंतन दादी का था, मैं कौन, मैं शुद्ध आत्मा, मैं कौन, मैं बाबा का वारिस, मैं कौन, मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा। रोज लिखो ऐसे 20-30 बातें, मैं कौन, मैं पूजनीय आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं कौन, मैं तपस्वी आत्मा, मैं कौन, मैं राज ऋषि आत्मा। तो ये तो हमें याद ही नहीं आती बातें, याद आता है मैं राज ऋषि हूं, ज्ञान सुना देंगे, हाँ हम ऋषि हैं, है नहीं। तो ये है समझना, अपने को आत्मा समझो। तो पहला है सिमरण, दूसरा है ये अभ्यास मनन। तब मेरा चिंतन अभ्यास करने से चिंतन श्रेष्ठ बनेगा। विद्या अभ्यास मांगती है, दुनिया में भी कहते हैं विद्या अभ्यास मांगती है, पढ़ाई अभ्यास मांगती है। मुझे भी देवता बनना है तो अभ्यास चाहिए, यही अभ्यास बाबा मुझे अपना बनाता है। मैं बाबा का वारिस हूं, मैं बाबा का लाडला बच्चा हूं, मैं बाबा का प्यारा बच्चा हूं, मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूं, मैं बाबा का ईमानदार बच्चा हूं, मैं बाबा का वफादार बच्चा हूं, लिखो कम से कम 100 बातें तो लिखो, मैं कौन हूं। दुनिया की बातें तो हम फटफट करते हैं, ये दिया ये लिया ये है वहां ऐसा है वहां ऐसा है, फिर कहेंगे आप कौन, अरे सब भगवान के ही बच्चे हैं। ना ऐसे नहीं, सब भगवान के बच्चे हैं नहीं, मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं वारिस हूं, मैं श्रीमत पर चलने वाला भगवान का सपूत बच्चा हूं, मैं भगवान का सगा बच्चा हूं। रोज 100 बातें लिखो। कहा ना 4 महीना दिवाली तक ये पुरुषार्थ हम करेंगे तब हमारा ज्वालामुखी योग हमें समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो मनन चिंतन में लगना है, सिमरण में लगना है, अपने भीतर जाना है, अनुभव करना है, बाबा के साथ अपनी डोरी बांध के रखनी है, सब बातों से न्यारे हो जाओ, फिर आप बैठ के योग करेंगे ना, फिर देखो आपको कितना आनंद आएगा। प्रैक्टिकल में कर्म योगी है ना, तो कर्म करते हुए मेरा ये चिंतन चले, फिर अपने आप बाबा काम कराता है। ऐसे नहीं बहन जी सेवा का प्रोग्राम है तो थोड़ी प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। कौन सी प्लानिंग, क्या प्लानिंग, टाइम वेस्ट क्यों करते हैं प्लानिंग में। मान लो मैं सेंटर पर रहती हूं, भट्टी होनी है तो पता है भाई बहनों को इन्फॉर्म करना है, भट्टी कराने के लिए किसी को बुलाना है, जो आएगा उसके लिए कमरा भी चाहिए भोजन भी चाहिए। अब इसमें क्या प्लानिंग करनी है, एक सेकंड का काम है। जितना हम भीतर साइलेंस में जाएंगे, आपका चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो, परिवार हो, बच्चों को कहना तो पड़ता है, बताया ना बच्चों को कुछ नहीं कहना, आप बच्चों को जाके कहना हमें बाबा ने कहा एक महीना मौन में रहो, वो कहेंगे बहुत अच्छा धन्यवाद, करके देखो। आप कहेंगे वाह हमारा तो परिवार बदल गया, पता है लोग क्या कहेंगे, आप जरा करके देखना कि हमें बाबा ने कहा है एक हफ्ता मौन में रहो, आपके परिवार वाले आपके बच्चे कहेंगे अरे वो मौनी महाराज को भी पूछ लो कुछ खाया पिया है या नहीं खाया, आप करके देखिए क्या विचार है, कहेंगे या नहीं कहेंगे। आप सब काम कर रहे हैं लगे हुए हैं, अरे ये तो बहुत पक्के हैं बोलते ही नहीं है, पर वो मौनी को पूछना भाई चाय भी पी के नहीं पी, वो आपके पीछे पीछे आएंगे। समझा, समझा, समझा। अब कौन कौन करेगा ज्वालामुखी योग, इतना गहरा पुरुषार्थ करना है, गहरा पुरुषार्थ। तो चलो अब बैठे योग में, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, हाथ उठाइए, किसी का कोई प्रश्न हो तो, कोई प्रश्न हाथ उठाइए भाई। और सबके पास उत्तर ही उत्तर है, प्रश्न है ही नहीं। माताएं कोई प्रश्न कोई बात, आज बाबा ने भी कहा ना मुरली में क्या कहा था, हाँ समझ ना आए तो 1000 बार, आज 100 बार नहीं बाबा ने कहा 1000 बार पूछो, तो भाई कोई प्रश्न हो तो पूछो, नहीं है। अच्छा हाँ माता है, क्या कह रही हैं। कुछ पूछने, ये माता कुछ सोच तो रही है, नहीं अच्छा जी हिंदी बोलो हिंदी। अच्छा तो चलो फिर, ऐसा ही लग रहा है कि आपके पास कोई प्रश्न नहीं है, और वैसे भी आप बाबा के सब पुराने बच्चे हैं तो प्रश्न वाली बात भी नहीं है। अब तो बात है कि मुझे ज्वालामुखी देवी खुद बनना है, बस ज्वालामुखी देवी माना, बताया ना वहां का पानी एकदम ठंडा है, मेरा मन और बुद्धि एकदम शीतल है। कोई भी चिंता है, समस्या है, साक्षी होके देखो। मान लो यहां हाथ में दर्द है, दवाई ले ली, पट्टी बांध ली, ऐसे नहीं क्या करूं दर्द है क्या, साक्षी होके इसको देखो। दर्द है, साक्षी हो जाओ। ऐसे ही कोई भी आपकी समस्या है, परिवार की है, व्यापार की है, पहले साक्षी हो जाओ। मैं बाबा के साथ बैठा हूं, ये है ज्वालामुखी योग। मैं, मेरा मन कहां एकाग्र है भाई? लाल लाइट ना मिक्स करना, वो एकदम लाल नहीं, सफेद भी थोड़ी लाल भी। तो एकदम पहले साक्षी, आपको सब थके तो नहीं ना, फिर उठना नहीं कोई भी, सब ठीक होके बैठ जाओ। एक बार कॉपी पेन छोड़ दीजिए, पहले साक्षी होकर ऐसा बैठो जो थोड़ा टच नहीं हो, और एकदम अलर्ट सीधे होके बैठो। ऐसा सहारा, ऐसे ऐसे नहीं बैठना है। एकदम साक्षी दृष्टा हो जाइए। मैं अति सूक्ष्म आत्मा, ये शरीर मुझ आत्मा का बाजा है, आत्मा बजाने वाली है। अभी मैं आत्मा भी शांत, ये बाजा, ये कर्म इंद्रियां सब शांत। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, परम धाम में ज्योति बिंदु शिव बाबा के साथ, एकदम बाबा के साथ। एक ही संकल्प में रहिए, मैं आत्मा बाबा के सामने हूं। परम धाम से ही साक्षी होकर इस देह को देख रही हूं। ये देह, ये रथ तपस्या के लिए बाबा ने मुझ आत्मा को दिया है। ये रथ भी एकदम स्वस्थ ठीक रहे, और मैं आत्मा एकदम प्रसन्न, शांत, पवित्र, सर्वशक्तिवान बाबा के सामने हूं। महसूस कीजिए बाबा का प्रकाश, शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही। सचमुच भाग्य विधाता बाबा की संता कितनी भाग्यवान, सर्वशक्तिवान के एकदम करीब, सब शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, यही प्रकाश, यही शक्तियां, यही वाइब्रेशन, मैं आत्मा बाबा के साथ पूरे विश्व को दान दे रही हूं। प्रकृति के पांचों ही तत्वों को भी शांति, पवित्रता, शक्ति का दान दे रही। ये प्रकृति बहुत सुखदाई है, सेवाधारी है। प्रकृति का भी तहदिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रकृति के पांचों तत्व भी शांत पावन बन रहे हैं। पूरी सृष्टि का वातावरण, सब मनुष्य आत्माएं शांत रहे। शांति शक्ति के वाइब्रेशंस फैलाए। पुनः महसूस कीजिए, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा के एकदम करीब, शिव बाबा का प्यार, शक्तियां मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। मैं आत्मा शांति, पवित्रता, शक्तियों का पुंज हूं। मुझ आत्मा के चारों ओर ये शांति पवित्रता का बहुत गहरा प्रकाश ही प्रकाश है। बस मैं आत्मा बाबा की और बाबा मेरा, ज्योति बिंदु सर्वशक्तिवान बाबा को देखते रहे।